Hare Krishna.
Hare Krishna.
So I'm very pleased to be here today and to see all the development that has taken place here in Nigadi.
मुझे बहुत प्रसन्नता है यहाँ पर आकर और ये देखकर खुशी है कि कैसे Nigadi में ज्यादा विकास हुआ है.
The last time I did a program here, it was in a South Indian temple.
पिछली बार जो कार्यक्रम था वो श्री कृष्ण मंदिर में उधर दक्षिण भारत साउथ इंडियन टेम्पल में हुआ था.
And now we have such a beautiful big temple.
और अभी इतना सुंदर बड़ा विशाल मंदिर है.
And it is filled with so many nice devotees and seekers of the truth.
इतने सारे भक्तों से भरा है और जो सत्य की तलाश में ऐसे व्यक्तियों से भरा हुआ है.
In the Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya describes the process of devotional service to Srila Rupa Goswami.
Chaitanya Charitamrit में Chaitanya Mahaprabhu Rupa Goswami को भक्ति की विधि का वर्णन करते हैं.
And he says, Lord Chaitanya said to Rupa Goswami, Brahmanda Bhamite Kona Bhagyavana Jiva Guru Krishna Prasadi Pai Bhakti Lata Bija. Which means that there are many living entities wandering throughout the universe.
Rupa Goswami को चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि ब्रह्मांड में बहुत सारे जीव हैं जो अलग अलग जगह पर भ्रमण कर रहे हैं.
But when one fortunate jiva, when one jiva is fortunate, he gets the seed of devotional service by the mercy of Guru and Krishna.
उसमें जो जीव बहुत ही भाग्यशाली है उसको गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है.
And Srila Prabhupada gives one example of Narada Muni, who was blessed by the mercy of devotees to receive the seed of bhakti.
Srila Prabhupada udharan dete hain Narada Muni ka, jinko bhakton ki kripa se bhakti ke beej ki prapti hui thi.
Narada Muni's mother was engaged as a menial servant to some saintly persons, Bhaktivedantas, who had come to stay in one place during the Chaturmasya.
कुछ नारद मुनि की माँ जो है वो कुछ संतों की सेवा कर रहे थे जो चातुर्मास्य के लिए एक स्थान पर निवास करने के लिए आए हुए थे.
And her son, Narada, was only 5 years old.
उस समय उनके बेटे नारद मुनि की उम्र सिर्फ 5 वर्ष थी.
But naturally, he would assist his mother and serve the sadhus.
वो इस तरह से अपने माता को मदद करते थे सेवा में.
And he became an object of affection and mercy of the sadhus.
इस तरह वो साधुओं के कृपा के पात्र बन गए.
And as a result, he eventually became the one of the greatest devotees in the entire sampradaya, Narada Muni.
इस तरह से वो संप्रदाय में सबसे महान भक्तों में से एक बन गए जो नारद मुनि कहे जाते हैं.
And Srila Prabhupada explains that the Krishna Consciousness Society is meant to give everyone the same chance that that small 5-year-old child had to associate with devotees, serve devotees, and hear from devotees about Krishna consciousness.
श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि यही सबको हमें अवसर देना है कि भक्तों का संग मिले, भक्तों की सेवा करें और भक्तों के मुख से कृष्ण भावनामृत के बारे में श्रवण करें।
And he said that Srila Prabhupada explains that Krishna is within the heart of every living entity, and he can understand the sincerity of a particular candidate.
प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण भगवान सबके हृदय में स्थित हैं और वो जानते हैं कि कौन व्यक्ति कितना प्रामाणिक है।
And if one is sincere, he will be given the opportunity to associate with the Krishna consciousness movement.
और अगर कोई वास्तव में प्रामाणिक है तो उसको अवसर मिलेगा भगवान कृष्ण के भक्तों का संग करने का।
And thus by the combined mercy of Krishna and Guru, the candidate gets the seed of devotional service.
इस तरह से गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति के जो बीज है वो उसको प्राप्त होती है।
So all of you have received the seed of devotional service by the grace of Krishna and Guru.
आप सबको गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति के बीज की प्राप्ति हुई है।
But what do you do when you get the seed?
लेकिन बीज मिलने के बाद आप क्या करते हो?
So Lord Chaitanya explains that you should become a mali, a gardener.
भगवान चैतन्य प्रभु बोलते हैं कि आपको माली बनना चाहिए।
And you should plant the seed deep within your heart.
उस बीज को हृदय में गहराई से बोना चाहिए।
And you should water the seed.
और उसका सिंचन करना चाहिए।
And what is the process for watering the seed of bhakti?
और भक्ति के बीज को सिंचन करने का तरीका क्या है?
What is that jal?
वो जल क्या है?
It is hearing and chanting about Krishna.
वो है कृष्ण के बारे में श्रवण और कीर्तन करना।
But Lord Chaitanya also explains that in the process of watering the seed, weeds, upasaka, unwanted creepers may also grow up alongside of the devotional creeper.
भगवान चैतन्य बताते हैं कि भक्तिरता के साथ 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 कुछ अवांछित उपशाखाएं भी पैदा हो जाती हैं।
So we have to be careful to distinguish between the unwanted creepers and the bhakti lata.
हमें इस बात पे भेद देखना चाहिए कि भक्ति लता में और जो अवांछित उपशाखाएं हैं वो दोनों के बीच में फर्क समझना चाहिए।
Now what are those unwanted creepers, upashaka?
और वो जो अवांछित उपशाखाएं हैं वो क्या हैं?
They are material desires.
वो है भौतिक इच्छाएं।
Actually, the desire for bhakti, just material enjoyment, and even mukti, impersonal liberation. They are unwanted creepers that may sprout up.
वो है भुक्ति यानी भोग करने की इच्छा और मुक्ति जो निर्विशेष में जो लीन होने की इच्छा है वो हमारे हृदय में जागृत हो सकती है।
So whenever we see one of these upasakas coming up, we have to be careful to take it out.
जब भी हम देखते हैं कोई उपशाखा प्रकट हो रही है तो हमें उसको उखाड़ लेना चाहिए।
Otherwise the jal, which is meant to water the bhakti lata, will be sucked up by those upasakas, and the creeper, the bhakti lata, will become weak.
नहीं तो क्या होगा कि जो पानी हम डाल रहे हैं पौधे के लिए, लता के लिए वो सब उपशाखाओं में चला जाएगा और फिर उससे जो मुख्य जो भक्ति की जो लता है वो कमजोर हो जाएगी।
So this is clear, and then Lord Chaitanya says that there's something even more dangerous than the upasakas.
फिर चैतन्य महाप्रभु बताते हैं उपशाखाओं से भी ज्यादा खतरनाक और एक चीज है।
And that is if a maddened elephant comes into your garden, he can uproot the bhakti lata and destroy everything in a few minutes only.
अगर ऐसे बगीचे में कोई पागल हाथी प्रवेश करता है तो वो कुछ ही मिनटों में पूरे भक्ति लता को और पूरे बगीचे को उजाड़ सकता है।
So what is that hati mata, that mad elephant? It is Vaishnav aparad.
और वो पागल हाथी क्या है? वो वैष्णव अपराध है।
So we have to be very careful to avoid Vaishnav aparad at any cost.
हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम वैष्णव अपराध से बच के रहें।
Now, what does Lord Chaitanya recommend for protecting the bhakti lata from the hati mata?
चैतन्य महाप्रभु क्या सुझाव देते हैं कि कैसे हम भक्ति लता को कैसे पागल हाथी से बचाएं?
That you should put a fence around your garden to keep out that mad elephant.
पागल हाथी से बचने के लिए एक जाला डालना चाहिए चारों तरफ से, जिससे कि वो प्रवेश नहीं कर सके।
And what is that fencing?
और वो जो जाला डालना है चारों तरफ वो क्या है?
The fencing is the circle of pure devotees, Shuddha Vaishnavas.
और वो क्या है? शुद्ध भक्तों का एक गोलाकार बनाना।
If we stay in the circle of pure devotees, we will be protected from that risk of committing Vaishnav aparad.
अगर हम भक्तों के संगति में रहेंगे तो हम ये वैष्णव अपराध से बच सकते हैं।
In other words, the converse is that by associating with non-devotees, one can be led into Vaishnav aparad.
इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि अगर हम अभक्तों का संग ज्यादा करते हैं तो फिर हम वैष्णव अपराध कर बैठेंगे।
Now, of course, we want to give the message of Chaitanya Mahaprabhu to everyone.
हम ये भी चाहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का संदेश हम सभी को सुनाएं।
And so we may meet people who are not devotees.
तो कई बार हमें अभक्तों से भी मिलना पड़ता है।
But we should give them our association, but we should be careful about taking their association. In other words, we should be careful of being influenced by their philosophies and their ideas.
हमें उनको अपना संग देना चाहिए, लेकिन इतने सावधान रहना चाहिए कि उनके विचार और उनके जो व्यवहार है वो हमको प्रभावित नहीं करें।
Now, some of you may be going to school, going to university, or going to work. And in your workplace, you will meet people who are not devotees.
आप में से कई स्कूल जाते होंगे, अपने अपने कार्य क्षेत्र में जाते होंगे और ऐसे कई लोगों से मिलते होंगे जो भक्त नहीं
हैं। So, Srila Bhaktivinoda Thakur advises that you can have normal interactions with them at work or at school, but you should not take their advice about spiritual matters, and you should not waste time discussing mundane topics with them.
भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि हम उनसे ऊपर से व्यवहार अच्छा करना चाहिए, लेकिन उनसे जो है उनके साथ समय ज्यादा नहीं बिताना चाहिए और उनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए।
But you should be kind and polite and interact with them as much as necessary.
तो उनके साथ दया से और प्रेम से व्यवहार करना चाहिए, लेकिन जितना आवश्यक है उतना ही व्यवहार करना चाहिए भक्तों के साथ।
So Srila Prabhupada formed ISKCON to give people the association of pure devotees so they could get the Bhakti Lata Beach and water it by chanting and hearing about Krishna in the association of pure devotees, and protect their Bhakti Lata by staying in that circle of pure devotees.
Srila Prabhupada ji ne iskon sanstha ki sthapna isliye ki ki hame ek dusre ke sangh ke prapti ho aur in bhakton ke sangati mein hum apne aap ko surakshit mehsoos kar sake.
Now another example of someone who received the Bhakti Lata at a young age is Dhruva.
और एक उदाहरण एक भक्त का जिनको छोटी उम्र में भक्ति की लता की बीज मिल गई और वो है ध्रुव महाराज.
Many of you may know this story, but still I will repeat it in brief.
आप में से अधिकांश भक्त जानते होंगे, लेकिन मैं संक्षिप्त रूप में ध्रुव की कहानी बताऊंगा.
Dhruva was the son of a great king, Uttanapad.
Dhruva jo hai ek mahan raja Uttanapad ke putra the.
And one day he was playing on his father's lap while his father was sitting on the throne.
Ek baar jab pitaji rajgaddi pe baithe the to Dhruva apne pitaji ki god mein khel rahe the.
And the king had two co-wives.
Raja ki do patniyan thi.
One was Dhruva's mother, Suniti, and the other was actually the king's favorite.
तो एक तो थी वो ध्रुव महाराज की माँ थी जिनका नाम था सुनीति, और दूसरे थे जो राजा को ज्यादा प्रिय थे.
So that Dhruva's stepmother rebuked him that you cannot sit on the throne. You are not born from my womb.
तो जो सौतेली माँ थी बोली कि आपको कोई अधिकार नहीं है पिताजी की गोद में बैठने का, क्योंकि तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ से नहीं हुआ है.
She had so much false ego.
उस सौतेली माँ में बहुत मिथ्या अहंकार था.
And but what is significant is that Dhruva's father, out of excessive attachment for his co-wife, put Dhruva off of his lap, which was actually not his heart's desire.
तो क्योंकि उनके पिता जो है वो उनकी पत्नी से ज्यादा आसक्त थे, तो उन्होंने ध्रुव को गोद से नीचे उतार दिया जो उनकी वास्तविक इच्छा नहीं थी.
And Dhruva was very upset, naturally.
और ये स्वाभाविक है कि ध्रुव को बहुत खराब लगा.
So he went to his mother and told her what happened.
उन्होंने जाकर अपनी माता से समाचार दिया कि क्या हुआ.
And he said, you know, what can I do? You know, we have to do something because I want my kingdom.
ध्रुव कहने लगे कि हमें कुछ तो करना होगा क्योंकि मुझे राज्य चाहिए.
And his mother said, I'm sorry, but I cannot do anything to help you because your father, the king, favors his other wife and there's nothing I can do.
कि माँ ने कहा कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि जो तुम्हारे पिता हैं वो उस दूसरे पत्नी से ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता.
Sometimes it happens that parents want to do something for their children. Sometimes their child might have a very difficult disease or a handicap and they want to do something for their child, but they can't. They don't know what to do. Whatever they try, nothing works.
कभी कभी माता पिता की स्थिति ऐसी होती है क्योंकि बच्चे अपंग होते हैं या उनको कोई बीमारी होती है और वो चाहते हैं कि अपने बच्चे को ठीक करें, लेकिन वो कुछ भी करते हैं वो कार्य नहीं करता, तो क्या किया जा सकता है.
And we all may come into a situation where we want to help someone, but we are incapable.
हम सभी स्थिति में आ सकते हैं कि हम मदद करना चाहते हैं किसी को, लेकिन हम शक्ति नहीं होती करने की.
So we should learn from the example of Dhruva's mother.
हमें ध्रुव महाराज की माँ के उदाहरण से सीखना चाहिए.
She told Dhruva, "I'm sorry, your father favors my co-wife, and I cannot help you."
तो उनकी माता ने बता दिया कि क्योंकि जो दूसरी पत्नी है वो राजा को ज्यादा प्रिय है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता.
So Dhruva asked, "Then who can help me?"
ध्रुव ने पूछा, कौन मदद कर सकता है?
And she said, "Only God can help you."
तो बताया, सिर्फ भगवान ही है जो आपको मदद कर सकते हैं.
So Dhruva said, "Where can I find God?"
ध्रुव ने कहा, मुझे भगवान कहाँ पर मिलेंगे?
She said, "Well, I don't know, but many saintly persons go to the forest to find God, so maybe you'll find him in the forest."
तो उन्होंने बताया, कई साधु पुरुष हैं जंगल में जाते हैं, तो शायद भगवान की प्राप्ति आपको जंगल में हो सकती है.
So Dhruva, at the age of 5, just imagine how determined he was. He went into the jungle to look for God.
5 साल की उम्र में ध्रुव महाराज जंगल में निकल पड़े भगवान की खोज करने के लिए.
But because he was only 5 years old, he was looking in the way that someone of 5 years would look.
तो क्योंकि वो खाली 5 वर्ष के थे, तो उस दृष्टि से देख रहे थे जैसे कोई 5 वर्ष का बालक देखेगा.
He would look behind the logs, the trees that had fallen down.
वो पेड़ों के और पत्थरों के पास देखते जो गिरे हुए हैं.
He would look under the stones.
वो पत्थरों के नीचे देखते.
He would look in the trees.
वो पेड़ों में ढूंढते थे.
So, although he didn't really know how to find God at that age, but he was very sincere in his desire to find God.
हालांकि उनको पता नहीं था कि भगवान की खोज कैसी करनी है, लेकिन उनकी प्रामाणिक इच्छा थी भगवान को खोजने के लिए.
And Krishna, like Prabhupada said in the purport, that Krishna is in the heart of everyone. And he knows the sincerity of the person.
Krishna सबके हृदय में है और वो जानते हैं कि हर एक की प्रामाणिकता कितनी है.
So Krishna, in the heart of Dhruva, could see that he is very sincere to find God, to find Krishna.
तो कृष्ण हृदय में जानते थे कि ध्रुव महाराज की बहुत प्रामाणिक इच्छा है भगवान को प्राप्त करने की.
So what did Krishna do?
तो कृष्ण ने क्या किया?
He sent a guru.
उन्होंने एक गुरुदेव को भेजा.
From within the heart of Narada, he instructed Narada to go to the jungle and find Dhruva and instruct him how he can find Krishna.
भगवान ने नारद मुनि को प्रेरणा दी कि तुम जाओ जंगल में ध्रुव को ढूंढो और उनको रास्ता दिखाओ कि कैसे उनको कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है.
So Narada found the boy.
नारद मुनि ने बालक को खोजा.
And he tested him.
पहले नारद मुनि ने परीक्षा ली.
Because sometimes the guru will test us to see how sincere we are.
Kabhi-kabhi guru hamari pariksha lenge janne ke liye ki hum kitne pramanik hain.
Or as Srila Prabhupada said, sometimes in the beginning Maya will test the devotee as a service to Krishna, so that if the person is insincere, then the person will go away and will not disturb Krishna with his material desires.
और कभी कभी माया देवी परीक्षा लेती है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चा प्रामाणिक नहीं है तो उसको रोक देती है, जिससे वो जाकर भगवान कृष्ण को विचलित नहीं करे.
So Narada Muni himself tested Dhruva.
नारद मुनि ने स्वयं ध्रुव की परीक्षा ली.
And he said, my dear boy, I know what has happened.
उन्होंने कहा, हे बालक, मुझे पता है क्या हुआ है.
But you are only 5 years old.
लेकिन आप सिर्फ 5 वर्ष के ही.
This is the age when you should be playing and enjoying with other children.
अभी खेलने के और मजा करने की उम्र है.
And this insult, you should not take it seriously.
और ये जो तुम्हारी बेइज्जती की गई है, उसको ज़्यादा गंभीरता से मत लो.
You should be neutral or peaceful. You should be equipoised and just go back home and enjoy life by playing with other children.
आपको शांत रहना चाहिए और जाकर दूसरे बच्चों के साथ खेलना चाहिए.
And Dhruva Maharaj, not Maharaj then, but Dhruva replied, you have given me very good advice.
Dhruva ने जवाब दिया कि आपने बहुत अच्छी सलाह दी मुझे.
That I should be equipoised in all circumstances.
आपने बताया कि हर स्थिति में मुझे बस शांत बने रहना है.
But unfortunately, I cannot follow your advice.
लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आपकी सलाह का मैं पालन नहीं कर सकता.
My nature is such that I want my kingdom.
मेरा दबाव यह है कि मुझे मेरे को अपना राज्य चाहिए.
And that he was of such strong character, he said, I want an even bigger kingdom than my father's.
वो कहने के मुझे तो मेरे पिताजी से भी ज़्यादा बड़ा राज्य चाहिए.
So, if you can help me to find God, then I will be very happy.
अगर आप मुझे भगवान की खोज में मदद कर सकते हैं, तो मैं बहुत खुश होऊंगा.
But if you are going to tell me to go home, then you can go home.
अगर आप मुझे बोल रहे हैं कि आपको घर जाने की ज़्यादा इच्छा है कि आप घर में चले जाएं.
So, Dhruva passed the test.
Dhruva ने इतना परीक्षा में पास हो गए.
And Narada instructed him to perform different austerities and to chant the holy name of God.
और नारद मुनि ने आज्ञा दी कि तपस्या करने के लिए और भगवान के नामों का जप करने.
And Dhruva followed the instructions of his spiritual master exactly to the detail, minutest detail.
और ध्रुव महाराज ने अपने गुरुदेव की सभी आज्ञाओं को बहुत अच्छी तरीके से उसका पालन किया.
And his chanting was so sincere and his austerities were so severe that very quickly God became pleased with him and he appeared before Dhruva. He fulfilled Dhruva's desire to see him, to meet him.
और वो इतने प्रमाणिक थे कि बहुत जल्दी ही भगवान उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए और फिर उनके सामने प्रकट हो गए.
And Dhruva was overwhelmed with transcendental ecstasy.
और ध्रुव बिल्कुल दिव्य भाव में विवल हो उठे.
And the Lord touched his head with his conch shell, and although Dhruva was just a 5-year-old boy, but all the beautiful thoughts that he had within his heart, he could express by the grace of the Lord.
भगवान ने अपने शंकर जी को स्पर्श किया और हालांकि वो 5 वर्ष के बालक थे, वो अपने दिव्य भावों को बहुत अच्छी तरीके से प्रकट कर सके.
So in the end, the Lord said that I am pleased with you, I am prepared to give you any benediction you want. Please ask me for whatever you want.
तो भगवान ने उनसे बताया कि मैं आपसे बहुत खुश हूँ, आपको क्या वरदान मांगना है आप मांग लो मेरे से.
And Dhruva said, I don't want anything. I'm fully satisfied just seeing you.
और ध्रुव महाराज बोले मुझे और कोई चीज नहीं चाहिए बस आपके दर्शन हो गए मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया.
And the Lord said, but what about your kingdom? You came and you performed all these austerities to get your kingdom.
भगवान उनसे कहा कि आपने जो तपस्या की थी राज्य प्राप्त करने के लिए वो इच्छा का क्या हुआ राज्य प्राप्त करने.
And Dhruva replied that that kingdom, and he was not talking about an ordinary kingdom. His father, Uttanapada, was the ruler of the whole world, the whole earth, planet. And he wanted a kingdom that was bigger and better than his father's. But still, he said that that kingdom was just like a piece of broken glass.
ध्रुव महाराज बोलने लगे वो राज्य वो साधारण राज्य नहीं था वो पूरे दुनिया के राज्य थे और वो कहने लगे वो जो राज्य है वो तो बस बिल्कुल कांच के टूटे हुए टुकड़े के समान है.
And now I've gotten you who are like the most valuable jewel.
और मेरे को आपकी प्राप्ति हो गई है सबसे बहुमूल्य मणि की प्राप्ति हो गई.
So I'm millions of times satisfied.
मैं लाखों गुना ज्यादा संतुष्ट हो गया
हूँ. स्वामीन कृतार्थोऽस्मि वरं न याचेत. I'm fully satisfied and I do not want any benediction.
मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ और मुझे कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए.
Now, Srila Prabhupada told this story to me in brief. When I first met Srila Prabhupada and asked him a question.
जब मैं प्रभुपाद से पहली बार मिला और मैंने प्रश्न पूछा तो प्रभुपाद जी ने एक कहानी मुझे बताई.
Last night I told how I was searching for a guru and ultimately after rejecting many so-called gurus I found Srila Prabhupada, or Krishna brought me to Srila Prabhupada.
कल मैंने ये कहानी बताई थी कि कैसे मैं बहुत जगह पे खोज रहा था गुरु के और बहुत सारे गलत गुरुओं को छोड़ के अंत में कृष्ण मुझे श्रील प्रभुपाद के पास लेकर आए.
And I realized that he was my perfect master for whom I was searching.
और मैं समझ गया यही मेरे पूर्ण स्वामी हैं जिनकी मैं तलाश कर रहा था.
And then every night I would come to hear Srila Prabhupada speak.
और हर रोज रात्रि को मैं श्रीला प्रभुपाद के प्रवचन सुनने के लिए आता था.
In Boston.
ये बोस्टन में था.
And after a few days I asked a question.
कुछ दिनों के बाद मैंने श्रीला प्रभुपाद से प्रश्न पूछा.
And the question was that I have been hearing you speak about service to God.
मेरा प्रश्न था कि मैं आपसे भगवान के प्रति सेवा के बारे में सुन रहा हूँ.
But what about service to man?
लेकिन मानव सेवा का क्या कहा जाए?
Where does that fit?
उसका कहाँ पर स्थान है?
And Srila Prabhupada replied by saying that if you can give someone something that will completely satisfy him, and upon receiving that gift, he does not desire anything else, is not that service?
तो प्रभुपाद जी ने बताया अगर आप किसी व्यक्ति को वो चीज देते हैं जिसको प्राप्त होने पे पूर्ण संतुष्ट हो जाता है तो क्या वो सेवा नहीं है अच्छी.
And in brief he told the story of Dhruva.
और संक्षिप्त में उन्होंने ध्रुव की कहानी बतलाई.
How by Krishna consciousness he became fully satisfied. He had no other desires.
कैसे कृष्ण भावना के द्वारा वो पूर्ण संतुष्ट हो गए और उनके अंदर और कोई इच्छा नहीं रही.
And he also told another story of Alexander the Great.
और उन्होंने एक और कथा बताई जो अलेक्जेंडर के बारे में थी. सिकंदर, सिकंदर की कहानी. They called सिकंदर अलेक्जेंडर.
And he was traveling all over the known world and conquering territories. Wherever he went, he was victorious, and he was having more and more territories conquered by him.
तो वो सिकंदर की कहानी बता रहे हैं. वो सब जगह पर जाकर आक्रमण करते थे और सब देशों को अपने अपने कब्जे में कर लेते थे और पूरे दुनिया में भ्रमण कर रहे थे.
So when he got to the outskirts of India, he saw a sadhu or a yogi in meditation.
वो भारत के क्षेत्र के अंदर आने लगे तो वहां पर देखा एक साधु जो है वो ध्यान लगा रहे हैं.
In blazing hot midday sun.
दोपहर का समय था और ग्रीष्म ऋतु के बहुत भयानक गर्मी थी.
So when Alexander saw him, he was very impressed.
तो सिकंदर ने जब देखा तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए.
So he got down and approached the sadhu.
वो नीचे उतरे और साधु से पूछा.
And he said, "I'm Alexander the Great, and I have conquered half of the world. But I'm so impressed with you that I'm ready to give you whatever you ask."
बोले मैं सिकंदर हूँ, महान राजा हूँ, मैंने आज ही दुनिया को जीत लिया है, लेकिन आपका व्यवहार देख के मैं बहुत संतुष्ट हुआ हूँ. आप जो बोलोगे मैं देने को तैयार हूँ.
So the sadhu said, "I have only one thing to ask."
तो साधु ने जवाब दिया, मुझे एक ही चीज चाहिए.
"Please move aside because you're blocking the sun."
साइड में हट जाओ, वो सूर्य की किरण आ रही है, उसको आप रोक रहे हो.
In other words, he didn't want anything. He was fully satisfied in his meditation and his austerities. And being in the sun was part of his austerity. He didn't even want any shade. He wanted just to continue as he was.
उनको छाया भी नहीं चाहिए थी. वो साधु को बस अपनी तपस्या जारी रखनी थी, इसलिए बस उसी स्थिति में संतुष्ट थे.
And then Alexander, he sent a letter back to the generals and officers who were following behind him.
तो बाद में वो सिकंदर ने एक पत्र लिखा जो उसके पीछे ऑफिसर और जो सेनापति चल रहे थे उनके लिए एक संदेश भेजा.
That these people in India are very special.
उनका संदेश था कि भारत के लोग बहुत विशेष होते हैं.
Don't mess with them. So Srila Prabhupada was saying that to give someone something that is so satisfying that even the emperor of the world cannot give him anything, or even God himself cannot give him anything, is that not service?
तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि अगर हम किसी व्यक्ति को ऐसी कोई चीज देते हैं जो कोई नहीं दे सकता, भगवान भी नहीं दे सकते, तो क्या वो सेवा नहीं है?
So giving people Krishna consciousness is the best service.
सबसे अच्छी सेवा है दूसरों को कृष्ण भक्ति प्रदान करना.
Otherwise, we can do other types of service on the material platform, but it will not satisfy the soul. Yayatma suprasidati.
दूसरी सेवा कर सकते हैं लेकिन आत्मा को संतुष्टि नहीं होगी इससे.
Savaipum sam paro dharmo that ito bhakti at hope siddhi. Only bhakti which is unmotivated and uninterrupted, yayatma suprasidati, only that can satisfy the soul or the self.
इसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि वही भक्ति जो बिना किसी हेतु के है और बिना किसी रुकावट के है, वही जो है आत्मा को संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं.
So yesterday I met an old friend of Srila Prabhupada's in Pune named Mr. B.R. Malhotra.
कल मैं यहाँ पुणे में श्रीला प्रभुपाद जी के पुराने मित्र मिस्टर बी आर मल्होत्रा से मेरी भेंट हुई.
एंड मिस्टर मल्होत्रा लाइक मेनी पीपल वाज इंक्लाइंड टू व्हाट वी वुड कॉल मंडेन वेलफेयर वर्क सच एज फीडिंग पुअर पीपल.
और मिस्टर मल्होत्रा वो कई लोगों की तरह उनका स्वभाव था कि गरीब लोगों को भोजन कराना.
So he asked the Prabhupada that what is the use of spending so much money on temples? You could use that money to feed poor people.
उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा कि मंदिर बनाने के लिए पैसा खर्चने की क्या जरूरत है, उससे हम ज्यादा अच्छा कि गरीबों को भोजन बांट सकते हैं.
And Srila Prabhupada replied by giving an example.
Srila Prabhupada ji ne ek uttar mein udaharan diya.
Suppose there is a very wealthy man.
Maan lo koi bahut hi ameer vyakti hai.
And for some reason his son, say teenage son, runs away from home.
किसी कारणवश उनका जवान बेटा जो है वो घर छोड़कर चला जाता है.
And he's living on the footpath, just like an ordinary homeless person, just begging.
और वो रास्ते पे बस साधारण व्यक्ति की तरह वो जमीन पर लेटा हुआ है और सड़क पे ही रह रहे हैं.
And you're walking down the street and you recognize that boy.
और आप सड़क पर जा रहे हैं और आप पहचान लेते हो कि लड़का कौन है.
Now you can buy him a meal and feed him.
आप चाहे तो कुछ खरीदी करके उनको भोजन दे सकते हैं.
But after 3 hours or 6 hours, he'll be hungry again.
आप उसको भोजन दे भी 3 घंटे बाद या 6 घंटे बाद तो फिर भूख लगेगी.
But if you approach him and you say, "Oh, I know you. You are the son of so and so rich man. What happened? How did you come to this condition?"
या अगर आप बताते हैं उसको, हाँ मैं आपको जानता हूँ, आप फलाने व्यक्ति के बेटे हैं, आप इस स्थिति में कैसे आ गए?
You come with me. I will take you to your father.
आप मेरे साथ चलो, मैं आपको पिता से मिलाऊंगा.
And when you go back to your father's home, you will get everything you need.
जब पिताजी के पास आ जाओगे तो जो चीज चाहिए वो अपने आप आपको मिल जाएगी.
Food, shelter, clothing, whatever you need will be provided by your father.
आपको भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, रहने के लिए स्थान चाहिए, वो सब आपके पिताजी आपको प्रदान कर देंगे.
Now, if that boy comes with his father's friend back to his father, the father will be very pleased. Nothing would please the father more than to have his child back.
अगर वो बालक वापस अपने पिताजी के पास आ जाता है तो पिताजी को सबसे ज्यादा खुशी होगी. इससे बढ़कर उनके पिता को और कोई खुशी नहीं हो सकती.
And all of the son's problems will be solved.
और उनके सारी समस्याओं का हल हो जाएगा.
So what is a better service? To give that boy a meal and then he'll be hungry again a few hours later, or to take him back to his father where all of his problems will be solved?
तो क्या ज्यादा अच्छा है कि उसको थोड़े से भोजन देना जिससे बाद में भूख लगे, या उनको पिताजी से मिलाना जिसके इससे उनकी समस्याओं का हमेशा के लिए हल हो जाए.
So Krishna is the supreme father.
कृष्ण परम पिता है.
And the living entities within the material world are Krishna's children.
और दुनिया में जितने भी जीवात्मा हैं सब कृष्ण के ही बच्चे हैं.
But somehow they have left their father's home.
लेकिन किसी कारणवश अपने पिताजी के घर को छोड़कर आ गए.
And they are struggling in the material world.
और वो भौतिक दुनिया में संघर्ष कर रहे हैं.
For roti kapra or makan. But they don't have to be struggling like that. They can go back to their father and have all of their needs fulfilled, and the father will be happy and they will be happy.
उनको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है. वापस पिताजी के पास आ जाएं तो पिताजी उनको दे देंगे और फिर वो प्रसन्न हो जाएंगे.
So that is the service that devotees are rendering.
वो ये सेवा है जो भक्त कर रहे हैं.
And that is the providing a permanent, lasting solution for all problems.
वो सारी समस्याओं का शाश्वत हल है.
And therefore, we build temples as a place where people can be educated to revive their lost relationship with God, with their original father.
इसलिए हम सुविधाएं बनाते हैं जिससे लोगों को अपने पिता के साथ संबंध स्थापना करने में सहायता हो सके.
And we distribute books, we hold festivals, we distribute prasad, just to help people revive their relationship, eternal relationship with God, with the Supreme Father, with Krishna.
और हम पुस्तक वितरण करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं, इसलिए कि लोग परम पिता या कृष्ण के साथ अपने संबंध को फिर से जागृत कर सकें.
So Srila Prabhupada, he crossed the ocean with the message of Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, and he planted that seed of bhakti in so many hearts.
Srila Prabhupada ji ne wo sandesh liya aur sagar paar karke gaye aur kai logon ke hriday mein Krishna ka sandesh sanchar kiya.
As he was ordered by his spiritual master Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur to preach the message of Chaitanya Mahaprabhu in the English language throughout the world.
उनको उनके गुरुदेव ने आज्ञा दी थी कि आप चैतन्य महाप्रभु का संदेश अंग्रेजी भाषा में पूरे विश्व में वितरण करो.
And after preaching in America and the Western world for 5 years, Srila Prabhupada decided to return to India with some of his American and European disciples.
और अमेरिका में कुछ साल प्रचार करने के बाद प्रभुपाद जी ने वापस भारत में लौटने का निश्चय किया अपने कुछ अमेरिकन और यूरोपियन शिष्यों के साथ. भारत में लौट के आए.
Because he saw the Indians are wanting to imitate the Americans.
उन्होंने देखा कि भारतीय जो है अमेरिकन की नकल कर रहे हैं.
So they see the Americans are becoming devotees of Krishna, they may also imitate that. And actually it happened that as Prabhupada would say to like the Indian audiences, that you are so eager for that you know, American way of life, materialistic way of life.
Prabhupada ji bolte the bhartiyon ko ki aap bhautik American jo jeevan paddhati hai uske liye aap itne utsuk ho.
And these young men and women have rejected that.
Aur ye sab jawan stri aur purushon ne us cheez ko thukra diya jo aap khoj rahe ho.
So you are chasing after something that they have rejected.
जो चीज उन्होंने ठुकरा दी है उसके पीछे आप दौड़ रहे हो.
So, but, you know, what is your standard?
क्या स्टैंडर्ड रहा है, क्या स्टैंडर्ड रहा है.
And so Srila Prabhupada returned to India with some of us from Europe and America. There was one Japanese boy in the group as well.
Prabhupada लौट के आए और कुछ लोगों के साथ उसमें जापानी भी थे.
And it was amazing. We arrived first in Bombay.
और हम पहले बंबई में आए.
And our host would take us and we would do Harinam Sankirtan in the streets.
हम लोग सड़क में जाके हरिनाम संकीर्तन करते.
And people were so moved. They never saw like American and European sadhus, Vaishnavas. They never saw such a thing, and they were literally weeping with joy.
उनको तो इतना आश्चर्य कभी देखा नहीं था अमेरिकन यूरोपियन साधु, तो उनके आंखों से प्रेम के आंसू आ रहे थे खुशी के कारण.
One day in that first period, we did Harinam Sankirtan in front of Sachivalaya, which is the government building.
एक दिन जो हम सचिवालय जो सरकारी बिल्डिंग है वहाँ पर जाकर कीर्तन किए.
And you know, some people gathered around. Usually, they would gather around.
कुछ लोग एकत्र हो गए, यहाँ भी जाते, कुछ लोग तो एकत्र हो जाते.
And we looked at this big building, many stories with so many windows on each floor, and there were at least two or three faces looking out of each and every window.
ये बड़ी बिल्डिंग थी और हर एक माले पे हर एक खिड़की से दो या तीन लोग देख रहे थे हमारी तरफ.
And finally some gentleman from inside came out and requested us that if we could take the chanting to some other location, because the whole work of the government had come to a complete standstill.
सब बोल रहे थे, तो एक व्यक्ति बाहर आया, बोला कि आप ना कीर्तन पार्टी थोड़ा आगे ले जाओ, नहीं तो हमारा पूरा काम बंद हो जाएगा.
So that was Srila Prabhupada's idea, and it was effective. It worked.
ये श्रीला प्रभुपाद जी का विचार था और वो वास्तव में सफल हुआ.
Then you know, we as we gradually got a little experience in India, we found that sadhus or preachers they have big pandal programs.
फिर हम भारत में, हमें पता चला कि भारत में प्रथा है कि साधु जो है पंडाल प्रोग्राम करते हैं.
So we thought we'll make a big pandal program for Srila Prabhupada.
हमने सोचा कि हम श्रील प्रभुपाद के लिए भी ऐसा पंडाल बनाएंगे.
But you should understand that at that time we had basically no money, and we had a few friends, but we didn't know many people. So it seemed like an impossible dream.
हमारे पास बहुत कम सहयोग करने वाले थे, पैसे नहीं थे ज्यादा, ऐसे लग रहा था असंभव स्वप्न.
But we asked Srील Prabhupada.
हमने प्रभुपाद जी से पूछा.
And Srila Prabhupada gave the example of hunting for a rhinoceros.
और श्रील प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया कि गेंडा का शिकार करना.
The rhinoceros is the most difficult animal to capture, more than an elephant or any other. It's huge and it's wild.
तो ये जो गेंडा है ये पकड़ना बहुत मुश्किल होता है और किसी भी जानवर से ज्यादा, ये बहुत बड़ा होता है और भयानक.
So Srila Prabhupada said that for us to put on this panda would be like shooting a rhinoceros.
हमारे लिए पंडाल कार्यक्रम करना मतलब ऐसा है कि जैसे गेंडे को पकड़ने जाते हैं.
But he said that we should try.
हमें प्रयास करना चाहिए इसलिए प्रभुपाद.
Because when you go to hunt a rhinoceros, if you fail, no one will blame you.
बोले कि अगर आप इतना ऊंचा लक्ष्य गेंडे को पकड़ने जाओगे अगर असफल भी हुए तो लोग आपकी निंदा नहीं करेंगे.
Everyone will say, oh, everyone knows you can't catch a rhinoceros. It's no disgrace. Nobody can catch a rhinoceros.
सब लोग क्या बोलेंगे वैसे भी गेंडे को पकड़ना मुश्किल है नहीं पकड़ा तो कोई बात नहीं.
So if you fail, no one will blame you. And if you succeed, everyone will praise you.
But,
oh, you captured a rhinoceros. So we did it. And, you know, by Krishna's grace, it was successful.
हमने कार्यक्रम किया और कृष्ण की दया से वो सफल हो गया.
We got the best location in Bombay.
बंबई में सबसे अच्छी जगह हमें प्राप्त हुई.
I don't know how many of you know Bombay, but many of you might know. It was right between the Churchgate station and Flora Fountain.
और ये जो मुंबई में चर्चगेट स्टेशन और फ्लोरा फाउंटेन के बीच में जगह थी जहाँ पर पंडाल किया गया.
Right next to Harsey Well. So, and especially during the rush hour, when the offices would get out, lakhs of people would be passing in front of the pandal on the way to Churchgate Station.
तो वो जगह इतनी अच्छी थी कि तब जो ऑफिस से दफ्तर से लोग जाते हैं चर्चगेट स्टेशन की तरफ तो लाखों की संख्या में लोग उस इलाके से गुजरते थे.
But apart from the location, there was tremendous publicity.
और जगह भी थी अच्छी और बहुत ज्यादा इसका विज्ञापन किया गया.
Shyamasundara Prabhu, one of Srila Prabhupada's first disciples, very dynamic and very creative. He organized a publicity campaign and practically everyone in Bombay knew about the Hare Krishna festival.
Shyamasundara Prabhu jo Prabhupada ji ke senior shishya hain unhone itna acha vigyapan kiya ki Bombay mein sabhi ko pata chal gaya is karyakram ke bare mein.
So there were billboards and posters, leaflets, big advertisements in the newspaper. Everyone knew about the festival.
तो पोस्टर्स भी थे, अखबारों में भी था और विज्ञापन भी दिए गए थे. सभी को पता चल गया.
And towards the end, just maybe like a day or two before the festival began, he got a billboard right at VT station.
और कार्यक्रम शुरू होने के एक दिन पहले उन्होंने बीटी स्टेशन के पास में एक बड़ा बिलबोर्ड प्राप्त किया.
And he put just two words on the billboard.
और बिलबोर्ड के ऊपर खाली दो शब्द रखे.
हरे कृष्ण. He didn't have to put cross Maidan, such and such date, such and such date. Swami Bhaktivedanta, American and European disciples. No, everyone already knew. It was just a reminder, like Hare Krishna. Because they already knew everything.
सबको पता ही था. वो खाली बस हरे कृष्ण बोले सबको पता चल जाता कि कहाँ पर है. पहले से ही पता था बस याद दिलाने के लिए.
And then at the site, he had like a big balloon filled with helium that was like hovering above the site, and anyone could look up and see that balloon, and the balloon also, you know, Hare Krishna, you know, festival.
और एक बड़ा गुब्बारा भर के रखा था जिसके ऊपर लिखा हुआ था हरे कृष्णा उत्सव और वो हवा में छोड़ा गया.
So On the first night, we didn't know what to expect, but thousands of people started to stream into the pandal.
और पहली रात्रि में हजारों की संख्या में लोग पंडाल में आने लगे.
And Srila Prabhupada, you know, spoke wonderfully, of course.
प्रभुपाद ने बहुत सुंदर ढंग से प्रवचन किया.
And the whole city of Bombay was really buzzing about this Swami who had gone to America and brought back these, what Prabhupada called dancing white elephants.
और पूरे सब जगह पे समाचार फैल गए. इसको प्रभुपाद जी बोलते थे नृत्य करने वाले सफेद हाथी.
So I was in charge of a lot of the management in the pandal.
मेरी जिम्मेदारी थी कि पंडाल की सब मैनेजमेंट जिम्मेदारियां थी.
And so one thing that was personally under my care was the book tables.
और मेरे को एक सेवा दी गई थी, वो था पुस्तक का जो टेबल है.
We had many of these wooden, long wooden tables next to each other with Prabhupada's books and some deity photos, few things, but mainly Prabhupada's books.
हमने ऐसे कई टेबल इंतजाम किए थे जिसमें मुख्य पुस्तक थे और थोड़े कुछ अर्च विग्रह के फोटो भी थे, लेकिन मुख्य पुस्तक.
And we had one Back to Godhead magazine published in Hindi.
और एक भगवत दर्शन पत्रिका जो है वो हिंदी में छापी.
And printed in Japan with Dainippon Press, so the paper was very good and the color pictures, and it was a very attractive magazine.
Oh, Japan में छापी गई थी इसका जो paper था और जो painting थे बहुत ही सुंदर.
So before coming to India, I distributed books in America, mainly magazines, Back to Godhead. And I would place the magazine in people's hands and they would look at it. And, you know, they'd sort of get attached to it. And I would say, you know, would you like to keep it? And, yeah. We just ask for a small donation. Like that.
तो महाराज जी बता रहे हैं कि पहले उनका अनुभव था अमेरिका में, वो किसी को मैगजीन या पुस्तक देते हाथ में और फिर उनको दिखा के फिर उनसे थोड़ा सा डोनेशन मांगते.
So I did the same thing at the pandal.
और मैंने पंडाल में भी वही सेवा की.
But something happened which I never experienced in America.
एक चीज हो गई जो अमेरिका में कभी अनुभव नहीं हुआ.
People took the magazine and walked away and didn't care.
मैंने हाथ में मैगजीन दिया तो बिना पेमेंट किए लोग लेकर चले गए.
So I consulted one of our main life members and advisors and I told him what was happening.
मैंने हमारे सलाहकार वालों को बताया कि अभी क्या कर रहे थे.
So he said, oh, in India you can't do it like that.
बोले ये भारत है, भारत में ऐसा नहीं कर सकते.
So how do we do it?
अभी क्या करना है?
He said, well, you have to drill a hole in the corner of the magazine. Then you put a string through the hole and tie the string to the leg of the table.
मैगजीन में एक छेद करो, उसमें धागा ले लो और धागा से मैगजीन को बांट के टेबल के पैर के साथ बांध दो.
That way they can see it. They definitely they want to see it before they decide to buy it, but they won't be able to walk away with it.
So maybe देख सकते हैं लेकिन ऐसे लेके नहीं जाएंगे.
So at that time there was a young American who was visiting the pandal. You're spending most of the day at the pandal.
उस समय एक नौजवान अमेरिकन थे जो पंडाल में आते रहते थे और बहुत समय बिता रहे थे.
And he had, you know, like shaded white cloths and matted hair.
उनके लंबे बाल थे और ऐसे सफेद कपड़े थे.
He was like a sadhu, but a different type of sadhu.
वो साधु थे लेकिन अलग प्रकार के साधु.
So I, you know, I approached him. He was a nice person and he was spending time. So I approached him, would you like to do some service?
तो मैंने उनको पास में बुलाया, बोला आप कोई सेवा करना चाहेंगे?
He said, sure, what would you like me to do?
बोले yes, मैं तैयार हूँ, क्या करूँ?
Well, I want you to poke holes in the corner of the magazine and put a string through it and tie the string to the leg of the table.
मैं चाहता हूँ कि आप ये मैगज़ीन के कोने में एक छेद करें धागा से, फिर टेबल के पैर में उसको बांध दें.
So he did it.
और वो करने लगे.
And later, he gave me the credit for being the first devotee in ISKCON to give him seva.
फिर बाद में उन्होंने मेरे को श्रेय दिया कि आप पहले भक्त हो ISKCON में, मेरी पहली सेवा आपने दी.
And that young man received Srila Prabhupada's mercy and is now famous as His Holiness Radhanath Swami.
और वो महान संत जो है वो परम पूज्य राधानाथ महाराज हैं, प्रभुपाद के स्वामी.
And also from the Pandav program, another great saint came forward, and that was His Holiness Lokanath Swami.
उसी पंडाल प्रोग्राम में परम पूज्य लोकनाथ महाराज भी प्रभुपाद हैं.
So this was all the result of Srila Prabhupada's coming to America, planting those seeds, and then coming back to India with his dancing white elephants. And then now all of this is coming from that beginning.
ये सब जो आज हम देख रहे हैं, ये सब की शुरुआत प्रभुपाद के उससे हुई कि प्रभुपाद अमेरिका से कुछ भक्तों को लेकर आए और अब उसी से समाज सब जगह पर फैल रहा है.
So we all owe a great debt of gratitude to Srila Prabhupada.
इसलिए हम सब श्रील प्रभुपाद के प्रति बहुत कृतज्ञ हैं.
Because without his mercy, without his efforts, without his hard work, we wouldn't be here today.
उनकी कृपा के बिना, उनके मेहनत के बिना आज हम यहाँ पर नहीं होते.
Even something that we might take for granted now was a big struggle in the early days of Srila Prabhupada's preaching in India.
तो जो जो चीजें अभी हम समझते हैं कि बहुत ही सरल है, वो पहले शुरुआत के समय बहुत संघर्ष था उसके लिए.
Of course, one thing is the books when Srila Prabhupada came to America, he had only the first three volumes of Srimad Bhagavatam and Easy Journey to Other Planets. We didn't have even the Bhagavad Gita.
जब प्रभुपाद पहली बार आए तो उनके पास सिर्फ भागवतम के प्रथम तीन थे और अन्य लोगों की सुगम यात्रा, उनके पास भगवद गीता भी नहीं था यथा.
And Prabhupada would hardly sleep at night, maybe 2 hours, from 10 at night to midnight, and then he would get up and translate.
प्रभुपाद जी रात को 10 से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे सोते, फिर उठ के अनुवाद करने लगते.
And now we have these precious books filled with gems of transcendental knowledge.
और अब हमारे पास प्रभुपाद की पुस्तकें हैं जो दिव्य मणियों के समान हैं, दिव्य ज्ञान.
But another thing that we might take for granted is the eligibility of someone who is not born in a Brahmin family to engage in brahminical activities such as deity worship.
और एक दूसरी चीज है कि जिसका जन्म ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ है, वो भी किस तरीके से भगवान की सेवा में, विशेष विग्रह सेवा में लग सकता है.
Srila Prabhupada was criticized a lot for giving brahminical initiation to people not born in Brahmin families.
सीधा प्रभुपाल जी की बहुत बार निंदा की जाती थी कि उन्होंने ऐसे लोगों को दीक्षा दी जो ब्राह्मण परिवार में नहीं जन्मे.
In fact, when he went to Hyderabad, some Brahmins, Hindu, maybe priests, they came to Prabhupada and they said that you are doing the greatest disservice to Hinduism by giving the sacred thread to these people who are not born Brahmins.
जब प्रभुपाद जी हैदराबाद में थे तो कुछ ऐसे जो हिंदू कुछ लोग थे वो आए और बोले आप सबसे बड़ा गलती कर रहे हो, जो लोग हिंदू परिवार में नहीं जन्मे उनको जन्म देख कर उनको ये सेवा में लगा रहे, ये गलत कर रहे.
And when when Srila Prabhupada first came to Bombay, there was a press conference, and one devotee named Gopal mentioned that prior to meeting Srila Prabhupada, he was a construction worker.
जब प्रभुपाद जी आए तो एक व्यक्ति जिसका नाम गोपाल था बताए प्रभुपाद से मिलने से पहले वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, कार्य करते थे.
So someone wrote a letter to the editor that he was a construction worker, that means he is a shudra, and now he has the sacred thread and he's worshipping the deity. What is this?
किसी ने पत्र लिखा कि ये क्या हो रहा है, पहले तो ये शूद्र थे कंस्ट्रक्शन के और आज ये अर्च विग्रह की सेवा में लगे हैं, ये क्या चल रहा है.
But Srila Prabhupada had us answer the letter with all statements from Shastra that proves that even if you're not born in a Brahmin family, but if you have the qualities of a Brahmin, you should be accepted as a Brahmin.
Srila Prabhupada ji ne un patron ka jawab diya aur shastron se bataya ki kisi ka janam brahman parivar mein na bhi hua ho agar usme brahman ke lakshan hain to usko brahman ke roop mein swikar kiya jana chahiye.
And if someone is born in a brahman family but he doesn't have the qualities of a brahman, he should not be accepted as a brahman.
Aur agar koi brahman parivar mein janma bhi hai agar usme brahman ke gun nahi hain to usko nahi swikar karna chahiye.
And Prabhupada said that it doesn't really make a difference if some caste Brahmins do not accept our devotees as Brahmins.
अब प्रभुपाद जी बताने लगे इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई जातिवादी जो ब्राह्मण हमको नहीं भी स्वीकार कर रहे थे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता.
He said just like in some province someone may practice law.
जैसे प्रभुपाद बताते हैं कोई राज्य में कोई व्यक्ति न्याय का जो है एक कार्य कर रहे हैं.
And in another province that person may not be accepted as a lawyer.
और दूसरी जगह पे उसको वकील के रूप में नहीं स्वीकार करते.
But that doesn't matter because he can still practice law. It doesn't matter that they don't accept him.
चाहे कोई स्वीकार करे नहीं करे वकील तो अपने कार्य को कर ही सकता है.
He said, it doesn't matter if some people don't accept them as Brahmins.
Prabhupada ji bole, isse farak nahi padta ki agar log hame nahi swikar kare Brahman ke roop mein.
And so Srila Prabhupada really did unprecedented service in making Krishna consciousness available for everyone. First, of course, by bringing it to America and Europe and Africa and Australasia, but even in India by defending the right of his devotees to be accepted fully as Vaishnavas and Brahmins and even more than Brahmins. And this combination of his, you know, traveling and preaching and at the same time fighting for the rights of his disciples to perform all of the services that a Brahmin can do, or even a sannyasi, And because of that, we are here where we are now, and we're able to do what we're doing now.
तो न केवल प्रभुपाद जी ने अमेरिका यूरोप अफ्रीका सब जगह प्रचार किया लेकिन फिर भारत में आकर जो उनका जो अधिकार है जो अनुयायी की योग्यता है भगवान की सेवा करने के लिए उनके लड़कर उन्होंने ये सेवा की और फिर उसी के द्वारा फिर ये प्रचार कार्य बढ़ा
So we should always remember what Srila Prabhupada has done for us and our great debt to him and try to repay it. Of course, we can never fully repay it, but try to repay it by serving him, by following his instructions, following the process of Krishna consciousness. And spreading Krishna consciousness as he did. That is how we can try to repay him.
हम प्रभुपाद जी के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेंगे और उनके जो ऋण है उनको चुकाने का प्रयास करेंगे हम चुका तो नहीं सकते लेकिन उनकी आज्ञा का पालन करके उनकी दिशा के अनुसार प्रचार कार्य करके हम उनको उनकी सेवा कर सकते हैं
And always chant the holy names.
और हमेशा भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करें
आपका बहुत धन्यवाद
Krishna. Any questions?
Hare Krishna. Maharaj, you were just explaining about BTC magazine distribution. So, from our side, we are starting our second year BTC marathon from next month, from 10th August. So, we need some information how to do the BTC magazine distribution. And it is necessary to every devotee to take part in that. So please give some idea.
Well, Srila Prabhupada said that Bath to Godhead is the backbone of the movement.
श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो ये जो भगवत दर्शन पत्रिका है ये हमारी पूरे आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण है
एंड वी वांटेड इट डिस्ट्रीब्यूटेड वाइडली
और वो चाहते थे कि इसका सब जगह पर वितरण हो
आई मीन In our days, what we did was we would sometimes approach wealthy people to sponsor subscriptions. But yeah, I mean, you're like local people, I'm sure you can find many ways to...
Maharaj is telling us that in our time we were looking for a sponsor and you locally know what will happen here, that you can see.
And if anyone, yeah, as many people can participate as possible.
And as many people can participate, it's very good.
Srila Prabhupada would personally go in Delhi with the Back to Godhead magazine, go to the tea stalls and personally one-on-one would sell back to Godhead
medicine. Srila Prabhupada kya karte the ki jo Delhi mein chai ki dukano mein market mein jaake apne haathon se ek ek patrika vitran karte the.
So are they serving prasad now, or is it going to service?
Yeah, it's even late, so they only started at the bar.
So maybe we should like have the fancy kirtan.
Maharaj ji ki ichha hai ki hum log bade aanand ke saath kirtan mein bhag le, khade ho.
Ek mera sawal kuch hai.
एक प्रश्न है, आप जरा एक मिनट बैठे हो, एक मिनट के लिए महाराज के लेक्चर के आधार के ऊपर एक प्रश्न है. महाराज ने जो महाराज ने जो बताया है किस तरह से ध्रुव महाराज की स्टोरी, सुकंद सिकंदर की स्टोरी महाराज ने बताई, लेकिन आज की शिक्षा इतनी ज्यादा खतरनाक हो गई है कि हमारे पूरे वर्णाश्रम धर्म को खत्म कर दिया है. और वर्णाश्रम धर्म में रूपा जी ने तो किसी तरह से ब्राह्मणों को बनाया है, लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन इतनी खराब ढंग से आपको शिक्षा दे रही है कि हमारी पूरी संस्कृति तो आज लोग गांव से शहरों तक जा रहे हैं. पीपल आर गोइंग अवे फ्रॉम प्लेसेस टू सिटीज. सो उसके लिए क्या करना चाहिए जिससे कि लोग जो है अपनी संस्कृति को समझ करके सिख हैं स्टे हियर, मतलब उनको बाहर ना जाए और अपनी संस्कृति को समझे और अपना कार्य यहाँ पर कर सके.
One thing, what should be done so that people don't leave the villages and they understand the value of their own culture in India.
Actually,
एक मिनट बैठ जाइए.
The village life is actually quite conducive for Krishna consciousness.
जो गांव का जीवन है, जो ग्रामीण जीवन है, वो कृष्ण भक्ति के लिए बहुत अनुकूल है.
Many people leave the villages and come to the cities, and then they struggle a lot.
कुछ लोग हैं जो गांव को छोड़कर शहरों में आते हैं और फिर बहुत संघर्षमय जीवन बिताते हैं.
And not only do they have to struggle to maintain themselves and their families, but they can get corrupted by all the bad habits that people in the cities have.
और न केवल उनको संघर्ष करना पड़ता है और उनकी आदतें भी खराब हो जाती हैं जो शहरों की आदतें हैं.
So the only reason really to be in a city is to preach.
एक ही कारण है हमको शहरों में आने का, वो है प्रचार करने के लिए.
So yeah. So we can go to the villages and preach and encourage them to lead a Krishna conscious lifestyle in the villages.
हम गांवों में जा सकते हैं और उनको प्रेरणा दे सकते हैं कि कृष्ण भावना में मय जीवन बिताएं गांवों में रहकर.
And if they leave the village and come to the city, we can maybe engage them in some of our farm projects or engage them in preaching.
और अगर वो छोड़कर आते हैं तो हम उनको भगवान की सेवा में कहां पर लगवा सकते हैं.
But I remember I went to the Mahakumbh Mela
महाराज जी बोल रहे हैं कि 1977 में जो महाकुंभ मेला होता है वहाँ पर महाराज जी गए थे प्रयाग।
Kumbh Mela is every 12 years.
Kumbh Mela 12 वर्ष में एक बार होता है.
And every 12 Kumbh Melas, that means every 144 years, is Mahakumbh Mela.
12 साल में एक बार कुंभ मेला होता है और 144 साल 12 गुना 12 साल में एक महाकुंभ मेला होता है.
And so Srila Prabhupada had us make a camp at that Mahakumbh Mela.
Srila Prabhupada ji chahte the ki hum us Mahakumbh Mela mein ek apna camp banaye.
And after the Kumbh Mela, a few of us stayed behind because we had to like dismantle the camp, get all the materials taken away, settle all the bills, pay what we were owed, take back the deposits that were owed to us.
तो हमारे में से कुछ लोग थे जो मेले के बाद रुके, क्योंकि तब जो पंडाल वगैरह था, जो अरेंजमेंट था, वो सब पैसे पेमेंट करना था, वो सब कार्य पूरे हिसाब के लिए रुकना पड़ा.
And we were, few of us were stayed behind, and we were living in just a very simple tent.
तो जो कुछ बचे थे हम छोटे छोटे तंबू बना के उसमें रह रहे थे.
And as all the other camps winded up, it was just like, it was just all sand and you know, some trees, and it was just very natural.
और जब बाकी सब तंबू निकल गए थे ऐसे एकदम रेती और ऐसे पेड़ बहुत ही था, बहुत ही अच्छा वातावरण लग रहा, स्वाभाविक वातावरण.
And it was so nice in the Sattva Gun. There was no anxiety, no dirt and noise and all the pollution of the city.
कोई बिल्कुल सत्वगुण वातावरण, कोई चिंता नहीं, कोई प्रदूषण नहीं, शहरों की तरह बिल्कुल अच्छा था.
And it was very easy to chant.
और वहाँ पर जप करना बहुत आसान था.
And our relationships were very good because there was no telephones. Now, but to speak of telephones, we have iPhones and so many distractions.
उस समय तो बिल्कुल अच्छा था, टेलीफोन नहीं थे, आजकल तो आईफोन और बहुत सारे फोन आ गए.
And even though it was so simple, so basic, we just had a well that we'd fill up the bucket and take snan and but we didn't want to go back to Bombay.
इतना अच्छा था, बस एक कुएं से पानी निकालना और एकदम तरल, हमको वापस बंबई जाने की इच्छा नहीं थी, वही रहना अच्छा लग रहा था.
And I remember the train ride, you know, when we were going through the countryside, it was quite pleasant.
जब हम ट्रेन से वापस आ रहे थे तो जब गांव के इलाके से ट्रेन गुजरती तो बहुत अच्छा लगता था.
But as we started getting closer to Bombay, you know, Thane, and it's like my body, like physically, it was becoming tense because all the people, all the pollution, all the noise, all the greed, all the cheaters, is like it was really very difficult to re-enter that atmosphere.
जब ट्रेन धीरे थाने की ओर आई और बंबई में प्रवेश करने लगी तो वातावरण एकदम खराब होने लगा और मेरे शरीर भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा था मुझे इस तरह गंदगी में प्रवेश करना.
But you know, we came to Bombay to preach. Prabhupada came to Bombay to preach, and we came to assist him. But other than that, there's really no reason to be in a big city. It's much better to be in the country.
Prabhupada chahte the hum prachar kare, isliye Mumbai mein aaye. Nahi to zyada achcha hai ki hum gaon ke vatavaran mein rahe, wahi zyada achcha.
And I've seen many groups from America, they come to India, yoga groups, different types of study groups, and after they visit the Govardhan Eco Village, they all consider it to be like the highlight of their whole visit, or at least one of the highlights of their visit.
ऐसे मैंने देखे बहुत सारे भक्त जो मुंबई में गोवर्धन इको विलेज जो बाड़ा में है वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो बोलते हैं ये हमारी यात्रा का सबसे अच्छा भाग रहा है.
So that's another way that we have a model of a, you know, Krishna conscious farm community, and then people can go and establish communities on the basis of that model.
और ये भी एक तरीका है कि एक आदर्श हम समाज स्थापित कर दें जगह पे और लोग वो देख करके जहाँ जहाँ वो जाए वहाँ पर सुविधाएं पैदा करें.
Just like this temple room reminds me a lot of the temple room at Chaupati.
जैसे मैं ये मंदिर देखता हूँ तो मुझे चौपाटी का मंदिर याद आता है.
So it's a pattern they developed it at Chaupati and now it's been replicated here with some little differences, but the basic idea has been replicated here.
जो चौपाटी में मंदिर है वो मूल विचार लेके वो थोड़े से बदल किए लेकिन मूल विचार वहीं से आए.
So our farm communities, ideal farm communities like the Govardhan Eco Village, it can be a pattern that can be replicated in different places. It can reverse that trend of people coming from the rural areas to the city. People can go back to the rural areas, but do it better because of Krishna consciousness.
तो जो गांवों में चीज है वो विचारों को लेना और वो अलग अलग जगह पे स्थापना करना और क्योंकि कृष्ण भावना साथ में है तो और भी ज्यादा अच्छा हो सकता है.
महाप्रभु हैज एट लीस्ट इन पुणे एवरी प्रोग्राम ही हैज एस्क्ड a question, and his questions are so good that they're always the last question. after answering his question, after my answering his question, everyone is always satisfied, and there are no more questions. So thank you, Hare Krishna.